अब आप देख सकते हैं कि क्या मैदाने जंग का नक्शा है। हुत्थल पुत्थल पड़ गई, बदनज़मी, बेकायदगी, सब तंजीम ख़त्म, सब ड्यूटीज ख़त्म, कोई एक जगह रहा ही नहीं, गड़बड़े शुरू हो गई। कोई कहता है भागो, कोई कहता रहो, कोई कुछ कोई कुछ, कुछ लोग इधर जाना चाहते हैं, कोई इधर जाना चाहते हैं। मुसलमानों में भगदड़ मच गई। कुछ ने कहा नहीं अल्लाह के नबी को देखो वो किधर है, हम उनका दिफा करें इस जंग में, कहीं इस घबराहट में कोई हमारे नबी को ना मार दे। और जूं ही वो अल्लाह के नबी के पास आए, आपको पता है कि बहुत जान का खतरा था, सबसे ज्यादा लोग अल्लाह के नबी की जान लेना चाहेंगे। कोई इधर से उधर करते कराते, आप देखिए कि इस वक्त ऐसे लग रहा था कि पूरा लश्कर जो है वो मैदान कारजार बना हुआ है। ऐसी भगदड़ मची कि मुसलमानों के हाथों से मुसलमान मारे जाने लगे। हज़रत खुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद यम्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान थे, ये मुसलमानों के हाथों शहीद कर दिए गए। और जब लोगों में खबर फैली कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, रहा सहा होश भी रह गया, सब जोश ठंडा, टूट कर रह गए। और कितनों ने तो लड़ाई ही छोड़ दी, कहने लगे अब हमने क्या करना है। वल्लाही उस वक्त वो आवाज़ें सुनाई दी जाने लगी जो कभी अल्लाह ना करे मुसलमानों के किसी गिरोह में सुनाई जाए। कहने लगे अल्लाह के नबी तो चले गए, अब हमने क्या करना है, आओ अबू सुफियान से जाके पनाह ले लेते हैं, चलो वापस पुरानी दोस्तियां जोड़ते हैं, पुरानी नस्बतें जोड़ के उन्हीं से मोहब्बत की बातें करते हैं, क्योंकि ये गिरोह तो टूट गया, लीडर मर गया, ख़त्म। वो समझते थे अल्लाह के नबी अगर फौत हो गए हैं तो अब इस्लाम गया, झूठ था उनका। इस्लाम तो आज भी कायम है और इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। उन्होंने कहा चलो, किसी ने कहा नहीं नहीं अच्छा ऐसा करते हैं, नहीं नहीं मुर्तद नहीं होना, बस अबू सुफियान से जाके बात करते हैं, ओके ओके ठीक है हम तुम्हें मानते हैं, तुम जीत गए हो। फिर उस वक़्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़ौके खुदाई लग जाता है, खड़े हो गए, कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो, जिस मकसद पर नबी ने जान दी आओ तुम भी उसी पर जान दे दो। जोश दिलाने वाले कुछ लोग होते हैं हमेशा। ये सारे भी जिनके दिलों में ख्याल आए थे ना, ये खोटे लोग नहीं थे, लेकिन वक्ती तौर पे कमजोरियां आ जाती हैं, बस उसे आ जाते हैं दिलों में। और सबसे बढ़ के आप देखिए कि अल्लाह के नबी के बारे में तो आयतें नाजिल हो गई, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ भी तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन कब्लिहिर रसूल, कितने ही रसूल उनसे पहले आए और आके चले गए। आफ़ई मा तो कुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम, अगर ये मर गए या मार दिए गए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे, और अगर कोई फिरता है तो शौक से फिरे, अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लम की हकीकी वफात से तकरीबन 7-8 साल पहले अल्लाह ने एक मंजर पेश कर दिया कि ये मोहम्मद, ये लीडर, ये साथी किसी वक्त भी जा सकता है, फिर क्या करोगे। उस वक्त तो उनको खुशी हुई कि नहीं अल्लाह के नबी जिंदा है, लेकिन जब हकीकी तौर पे अल्लाह के नबी की वफात हुई तो उसके बाद अल्लाह के नबी नहीं आ सके। आज हम रोएं चीखें अल्लाह के नबी एक दीदार करा दे, अल्लाह के नबी प्लीज़ हम आपको देखना चाहते हैं, वो नहीं आएंगे इस दुनिया में। काम करना है, उठो जिस बात पर उनकी ज़िंदगी थी उस पर काम करो। आप सोचिए कि जब भी हालात गड़बड़ होते हैं ना तो खरे खोटे अलग हो जाते हैं, वही बात जो हम दाल के दानों से देखी है ना, आप करके देखिए, पानी गर्म होता है ना तो सब जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो ऊपर आ जाती हैं, खोटी चीज़ें, मजबूत चीज़ें नीचे तय में जमने जाती हैं। सच्चे मुखलिसीन मुश्किल हालात में या एडवर्स कंडीशंस में या लीडर्स के ना होने पे ज़्यादा जम के काम करते हैं, जिम्मेदारी का एहसास होता है ना। जैसे आप देखिए कि आप में से किसी को याद होगा कि घर में सास या माँ बैठी हो ना तो मैं ठीक है आता है मेहमान, बैठो क्या हाल है, ठीक है चलो, बहू बेटियों का दिल करता है मिलती हैं नहीं मिलती, काम में लगी रहती हैं। जब घर में बड़े नहीं होते तो फिर क्या होता है, अम्मी जी की दोस्त आई हैं या बहन आई हैं, फिर वो उसको पूछती हैं क्योंकि बता आज अम्मी जी नहीं है, फिर ज़्यादा काम करता है बंदा। तो बाज़ दफ़ा लीडर्स इसलिए भी अलग होते हैं, अल्लाह उनको दूर कर देता है सोच के, क्या कि तुम आगे आओ, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा बनाना है। बाज़ देखे बच्चों की माएँ छोटी उम्र में बच्चियों को छोड़ के फौत हो जाती हैं, मैं ऐसी कई बच्चियों को जानती हूँ, वक्त से पहले बड़ी हो गई, ऐसे छोटे छोटे हाथों से घर के काम करती कराती, मेहमानों को चाय ला के पिलाती, ट्रे रखती, जैसे जिस उम्र में बच्चियों को खुद भी होश नहीं होती क्योंकि माँ चली गई उसको काम करना आ गया। तो याद रखिए, जिस तरह लीडर्स का पास होना एक रहमत होता है ना, इस तरह उनका वक्ती तौर पे दूर होना भी फायदा देता है, क्योंकि किसी वक्त भी एक अवधि जुदाई तो आनी वाली है ना हर एक को। मत अपने बच्चों को इतना हसास बनाएं कि आपके इधर से उधर होते उनकी जान पे बनी हो। हर माँ अपने बच्चे को मजबूत रखे, देखो किसी वक्त भी फौत हो गए। मुझे एक बच्चे की बात याद आई, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। बच्चे से मुराद माँ का बच्चा है, हमारे लिए तो बड़ा ही है, मैं वैसे ही प्यार से बच्चा कह रही हूँ उसको, यंग लड़का है। तो वो बातें कर रहा था मेरे हस्बैंड के साथ, तो उसने कहा कि, यानी सच्चा ईमान बोलता है ना दिल में से, तो उसने कहा कि सर मैंने अपनी मम्मी को कह दिया कि इफ़ आई डाई डोंट क्राई, अगर मैं मर गया तो रोना नहीं, क्योंकि आई विल मीट यू इन जन्ना। इतनी मीठी बातें थी उसकी, जैसे सच्चा ईमान, नया नया ईमान बोलता है ना, तो यंग लड़का है और वो बिल्कुल इस तरह की दीन की बातें करता हुआ मैंने सुना। मैंने कहा इसका ईमान कितना पक्का है, अपनी माँ को कह रहा है कि अगर मैं मर गया तो रोना नहीं। हमें तो हाल दो हाल पड़ जाते हैं, कभी किसी इंसानी सहारे को अपना सहारा ना समझें। बाज़ लोग ये जुमला बोलते हैं, मेरे मियाँ को कुछ हो गया ना मैं नहीं बचूंगी, आज से तौबा करें वल्लाही, क्योंकि फिर अल्लाह आजमाता है आपको, जो आपका वीक पॉइंट होगा ना अल्लाह वहीं से तोड़ेगा आपको। कभी भी कोई चीज़ देखे तोड़नी हो ना, तो वहाँ से टूटती है जहाँ ज़रा सा पतली जगह होती है। रोटी कहाँ से टूटेगी जब ज़्यादा पतली हो चुकी होती है। कभी ज़िंदगी में किसी इंसान को अपना वीक पॉइंट ना बनाए, किसी का एक बेटा है तो वो उसकी आंखों का तारा बना हुआ वीक पॉइंट है, किसी की एक बेटी है तो वो वीक पॉइंट है, उसी बेटी की चोट पड़ेगी आपको सदमा आ जाएगा। अल्लाह चाहता है इस दिल में वल्लज़ीना आमनू शद्दु हुब्बल। अक्सर आपने अपने लोगों से ये बात सुनी होगी, कहते हैं जो कहें वो हो जाता है। मतलब कोई ऐसी है वो कहती है मैं बाहर की ज़िंदगी के बड़े खिलाफ बोलती थी, मुझे बाहर ही आके रहना पड़ा। एक थी वो बड़ा इस बात के खिलाफ बोलती थी कि शादी के बाद मेरी बेटी मेरे से दूर नहीं जाएगी, उन्होंने शर्त ये रखी कि रिश्ता अपने शहर में ही करूँगी। हो गया रिश्ता, 2-4 साल में हालात ऐसे बने बेटी सात समंदर पार चली गई। अब वो कहती है देखा मैं जो शोर मचाती थी मेरे साथ वही हुआ। तो शोर ना मचाएं, बस अल्लाह से कहे जो तू चाहे मैं वही चाहूंगी। अब इस वक्त सहाबाए कराम के दिल की क्या हालतें होंगी, हत्ता के काब बिन मालिक की नज़र अल्लाह के नबी पे पड़ गई। उन्होंने देखा अल्लाह के नबी तो जिंदा है, खुशी से बोले मुसलमानों खुश हो जो आप जिंदा हैं। मुझे इस जुमले को पढ़ते हुए कई अपने ख़ानदान के बड़ों की, करीबियों की मौत की खबर याद आ रही है। जब उनकी खबर मिलती है और बंदा जमा होता है ना, तो मुझे अच्छी तरह मेरे अपने दिल में आता है कि उस दिन हम ये सोच रहे थे नहीं कोई कह देगा ये झूठी खबर है, नहीं वो झूठ था, नहीं अब्बा जी जिंदा है अभी, नहीं अभी नाना अबू को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। ऐसा लगता है ना, बाज़ दफ़ा कोई फौत आपकी आंखों के सामने होता है। तो हमारे एक मामू का इंतकाल हुआ तो हम इतना शऊर नहीं था, तो यही था चौके, तो हम कहते थे नहीं देखना, वो जैसे कोई फिल्मों में भी देखा होता था ना, वो कहते हैं नहीं नब्ज़ आके देखी, नहीं सांस चल रही है, फिर ज़रा कोशिश की तो जिंदा। तो हम कहते थे नहीं मामू जिंदा है, अभी थोड़ी देर बाद देखना है, इन्होंने उठ के बैठ जाना है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे एक मामू की जब डेथ हुई तो बहुत लड़कपन था, मुझे हेवला सा याद है। तो मैं पूरा वक्त जो उनकी डेड बॉडी थी ना उसके पीछे इस तरह बैठी थी कि उनके बाल दिख रहे थे मुझे, तो मैं क्या देख रही थी कि ये हिल रहे हैं। पूरा वक्त जो मेरी नजरें गड़ी हुई थी ना वो ये थी कि जरा सी इनमें हरकत होगी तो अभी उठ के बैठ जाएंगे, जहन ही नहीं मानता। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह के नबी को सही सालम देखकर सहाबा को खुशी कितनी हुई होगी। मैं इस खुशी को सोचती हूँ तो मुझे अपना दिल खिलता हुआ महसूस होता है। ऐसे है कि अल्लाह एक झटका दे के लोगों को कहे कि अभी नबी जिंदा है, इसकी कदर कर लो, अभी इससे फायदा ले लो, ये किसी वक्त भी तुमसे चला जाएगा। खैर जब पता चला कि आप जिंदा हैं तो वो सारे फिर वापस आ जाते हैं जो इधर उधर बिखरे होते हैं। अच्छा, आप जिंदा हैं, आप आ गए, आप हैं, आप इधर हैं, ठीक है। 30 लोग जमा हो गए, आप मुशरिकीन ने वापसी की राह रोकने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इस कोशिश में इनके 2 लोग और मारे गए। मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह निजात मिली इस तदबीर से। तीरंदाजों ने जो गलती की थी और अल्लाह के नबी की मुखालफत की थी, ये सब उसकी भारी कीमत थी। मुसलमान एक घाटी में जमा हो चुके थे, बस मुशरिकीन में हल्की फुल्की इनफिरादी झड़पें हुई मुसलमानों के साथ, लेकिन इसके बाद फिर मुशरिकीन आगे बढ़ के लड़ ना सके, थोड़ी देर मैदान में रहे और गुस्से के मारे मुसलमानों के जो मकतूलीन थे ना शुहदा, उनका मुसला करते रहे। समझते हैं मसला क्या होता है, डायसेक्शन, पेट फाड़ते, फिर उसके अंदर से उनके जिस्म की अज़ा निकालते, और उसके हार बना के गले में डालते थे। कान काट के, नाक काट के, शर्मगाहें काटते और पेट को चाक करते। हिंद बिन उतबा ने हज़रत हमज़ा का पेट चाक किया, इनका कलेजा निकाला, चबा ना सकी, थूक दिया। कान वगैरह हार बनाकर गले में और पाजेब में पहने, क्या दिल सख्त नहीं हुआ? डेड बॉडी को देखकर ही दिल को क्या होता है? और कहाँ उसके साथ ये करना, ये असल में गुस्सा दिखाते थे और अपने दिल का इंतकाम लेते थे कि देखो हमने मारा। उबई बिन खल्फ ने घमंड के साथ घाटी का रुख किया। इसका दावा क्या था? कहता था, आज मैं खुद मोहम्मद को कत्ल करके आऊँगा, नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बरक्स आप देखें तो अल्लाह के नबी ने इसको हौद और ज़िरा के दरमियान हलक के पास एक छोटे से तीर से ऐसी ज़र्ब लगाई कि अपने घोड़े से कई बार लुढ़क लुढ़क गया और बैल की तरह चिंघाड़ता हुआ कुरैश के पास पलटा। फिर वापसी में मक्का के बिल्कुल करीब मुकामे सरिफ पर पहुँच कर मर गया। ये है वो बदबخت शख्स कि जिसको अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से मारा। एक ही शख्स का नाम आता है। हदीस में आता है कि क़्यामत के दिन बदतरीन अजाब में वो शख्स होगा जिसने किसी नबी को मारा या जिसको किसी नबी ने मारा। और आप देखिए उबई बिन हल्फ उनमें से। और कहाँ, सर से यहाँ तक, आप देखिए जो गले, सर की हौद होती है ना, यहाँ तक टोपी होती है तकरीबन, फिर यहाँ से नीचे ज़रा शुरू हो जाती है, यहाँ एक पतली सी धारी खाली थी, उधर ही अल्लाह के नबी ने तीर मारा तो मर गया। इससे अल्लाह के नबी का निशाना भी समझ आता है कितना पक्का था। इसके बाद कुरैश के चंद लोग आए, इनकी क़यादत अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद कर रहे थे। ये पहाड़ के किनारों पर चढ़ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और महाजरीन की एक जमात ने लड़कर इनको पहाड़ से नीचे उतारा। बस शिकायत के साथ भी नबी वक्कास ने तीर मारकर इनके तीन आदमी कत्ल कर दिए। मुशरिकीन के मकतूलीन की कुल तादाद 22 और कहा जाता है कि 37 यानी 37 हुई, जबकि मुसलमानों के 70 लोग मारे गए। 41 41 खजरज के, 24 यानी 24 औस के और 4 महाजरीन के। कौन मारा गया? मदीना के लोग, महाजरीन नहीं, अंसार, नए लोग मारे गए, पुरानों में सिर्फ 4। इनके अलावा एक यहूदी भी मारा गया। बाज़ इससे मुख्तलिफ़ बातें भी कहते हैं। अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद जो इस काफ़िले में सरदार थे, इन्होंने आखिरी और नाकाम कोशिशें की और इसके बाद मक्का वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह के नबी जब घाटी के अंदर मुतमईन हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो मेहराज से जो ओहद के अंदर एक चश्मा है पानी ले आए और आपको पीने के लिए पेश किया। आपने कदरे नागवार बू महसूस की, इसलिए पिया तो नहीं, अलबत्ता इससे चेहरा धोया, सर पर भी पानी डाल दिया, मगर इसके सबब ज़ख्म से खून बहने लगा जो थम नहीं रहा था। चुनाचे हज़रत फातिमा ने चटाई का एक टुकड़ा जलाया और इस पर राख चिपका दी और खून थम गया। कोई फर्स्ट एड किट साथ नहीं थी, कोई अल्लाह के नबी के पास एमरजेंसी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। ये जोड़ तोड़ कर के ज़ख्म बुझा रहे हैं। मोहम्मद बिन मुस्लिमा खुश जायका पानी लाए जिसे आपने पिया और आपने उनको दुआए खैर दी। ज़ख्म के सबब जोहर की नमाज आपने बैठ कर पढ़ी, नमाज नहीं छूटी। कितने चोटें लगी हुई हैं, 70 साथी शहदा की सूरत में पास हैं और नमाज पढ़ी जा रही है। सहाबा ने भी आपके पीछे बैठ कर ही नमाज अदा की। क्या समझ आ रहा है? जमात नहीं छोड़ी। और जब सेहतमंद माशाल्लाह खाते पीते मर्द जमात छोड़े तो उसको क्या कहेंगे? जब मुशरिकीन वापसी के लिए पूरे तौर पर तैयार हो चुके तो अबू सुफियान जबले उहद पर नमुदार हुए, बुलंद आवाज से बोले, हल फीकुम मोहम्मद, क्या तुम में मोहम्मद हैं? किसी ने कोई जवाब ना दिया। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें अबू कहाफा के बेटे यानी अबू बकर हैं? फिर किसी ने जवाब ना दिया। इसने कहा, हल फीकुम उमर बिन खत्ताब, फिर किसी ने जवाब ना दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जवाब देने से मना किया था। यहाँ डिसिप्लिन तो आप देखिए ज़रा, कह दिया नहीं बोलना तो कोई नहीं बोल रहा। अब अबू सुफियान ने कहा, अच्छा चलो इन तीनों से तो फुर्सत हुई, यानी उसने नारा लगाया कि तीनों मर गए इसलिए नहीं बोले। खैर, ये बात सुनकर हज़रत उमर बेकाबू हुए, बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, जिनका तूने नाम लिया वो सब जिंदा है और अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा हुआ है। ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسلح ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ ہی میں نے اس کا برا منایا، یعنی سوری بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لوگوں نے انسانیت سوز کام کیا. آج کے بھی جو بڑے لیڈرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں، مسلمانوں کو مرا کے گاجر ملی کی طرح کٹا کے پھر کہتے ہیں ہم نے کہا بھی نہیں اور ویسے ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اپنی فائٹ کر رہے ہیں، کرنے دیجئے. پھر اس پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا اولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اول بلند ہونے سے الو علی. جب اس نے یہ شرک والا جملہ بولا نا کہ حبل کی جے ہو، حبل بلند، پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو جواب دیا، کہا تم بھی اس کو جواب دو کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی اعلی اور اجل ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں بات سنی چپ رہے، ابو بکر عمر خاموش رہے، لیکن جب شرک والی اس نے بات کی، اللہ کے خلاف بات کی، تو آپ نے جواب دلایا. تو یہاں سے آپ توحید دیکھ سکتے ہیں. ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لن العزی ولا عزی لکم، عزی بت تھا، ان کی دیوی تھی، ہمارے لیے عزی اور تمہارے لیے کوئی عزی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے، یعنی اس دن تم جیتے تھے، آج ہم جیت گئے، اور لڑائی تو ڈول ہے، ڈول کہتے برابری کو، مراد یہ کہ کبھی تم جیتے کبھی ہم جیتے. حضرت عمر نے کہا نہیں، برابر تو نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم میں. یہ کون بولے گا جس کو کانفیڈنس ہوگا، کیونکہ کافر مر کے جنت میں نہیں گیا، تو مسلمان اگر مر بھی گیا تو احد الحسنیین، دو میں سے ایک بلائی تو ملی گئی، یا جیت کے غازی بنتے یا دنیا سے گئے تو شہدا بن گئے. ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد رہے. پھر ابو سفیان نے عمر کو بلایا اور کہا عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی سے سیکھیے، خود نہیں بول رہے، ساتھیوں کو اگر تم یہ کہہ دو تم وہ کہہ دو، کبھی بندے کا اپنے بات کرنے کا دل نہیں ہوتا، جہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اب اس کو سسپینس کہے کہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، قسم دے کے پوچھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا واللہ نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں بھی سن رہے ہیں، کہا کہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہے اور تمہاری باتیں سن رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، یعنی تم سچ بول رہے ہو، مجھے تمہاری سچائی کا یقین ہے. آج کے کافر یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں؟ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے، چیلنج دے کے گیا کہ پھر لڑیں گے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی. یعنی آپ نے پھر چیلنج قبول کیا. ذرا بتائیے گا یہ کس حالات میں چیلنج قبول کیا؟ 70 ساتھی شہید، جسم زخموں سے چور چور، چوٹ لگی ہوئی، حوض کی کڑیاں پھنسی ہوئیں، آپ کو اتنا جذباتی دھچکا پڑا، 40 صحابہ کرام کی نافرمانی کا صدمہ، یہ تو سب سے بڑا ہوگا. واللہ ہی کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جائے کوئی بڑی بات نہیں، ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جو بات نہ مانے، جو بات سن کے اس پہ عمل نہ کرے، وہ صدمہ تو بندے کو زمین پہ لگا دیتا ہے کہ جب یہ ساتھی میری بات ہی نہیں سنتے تو کام کیا کریں گے. لیکن دیکھیے اتنے دھمکوں میں بھی اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم لڑیں گے، یہ جرات تھی. خیر مشرکین واپس گئے اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخموں کی خبر گیری ہونے لگی. ابو سفیان چلے گئے، مشرکین کے لشکر نے کوچ کیا، اونٹوں پہ سوار تھے، گھوڑوں کو پہلوؤں میں رکھا، اس کا معنی یہ تھا کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے، دور کے سفر پہ جا رہے تھے نا. اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو ان کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا، کیونکہ مسلمان تو باہر آئے ہوئے تھے، بلکہ یہ جاتے تو ان کو وہ 300 لوگ بھی مل جانے تھے خیر سے جو چھپے بیٹھے تھے مدینہ میں، لیکن اللہ نے ان کی مت مار دی. اتنا آسان تھا اس دن مدینہ پہ حملہ کرنا، لیکن اللہ جب دشمن کے دماغ پہ پردہ ڈال دے تو ڈل گیا، بغیر حملہ کیے واپس آ گئے. اور وہی بات ہے کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہوتا ہے، لہٰذا ان کو پھیر دیا. اس کے بعد مسلمان زخمی اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے. بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ میں منتقل کیا. آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے، اور سارے شہدا کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے. आपने दो दो और तीन तीन शहीदों को एक ही कब्र के अंदर दफन किया, और बसों का दो शहीदों को एक ही कपड़े के अंदर जमा फरमाया, और दरमियान में इज़हर घास डाल दी, और लहत में इस शख्स को आगे किया जिसे कुरान ज्यादा याद था, और फरमाया कि मैं इन लोगों के बारे में क़यामत के रोज़ गवाही दूंगा। क्या कसम बुरसी की हालत थी। और आप सोचिए, 70 लोग किसी ग्रुप के लोगों में से इकट्ठे दुनिया से चले जाएं, होश बाकी रहेगा? लेकिन मैंने जितना भी सीरत को पढ़ा और सुना ना, मैंने यही फील किया कि अल्लाह के नबी हालात को अपने ऊपर तारी नहीं करते थे, निबटते थे। आपके पास देखिए 10 काम है ना, 10 काम कोई भी आपके ऊपर, अपने घरेलू या दूसरे हो सकते हैं, आप उन 10 कामों से आसन दर्जे से सुबकदोश हो सकती हैं। शर्त एक ही है कि आप क्लासिफाई करें, पहले ये करना है इस वक्त से इस वक्त तक ये, और जब वो करी ना, पूरा दिल दिमाग सोच प्यार मोहब्बत उस काम में डाल दें। बस आपने खाना पकाना है, आपने सफर पे भी जाना है, आपने पेपर की तैयारी भी करनी है, आपने पढ़ाना भी है, और आपने कपड़े भी धोने हैं, और कुछ इस तरह के जो इधर दुनिया के दीन के काम है, कोई मसला नहीं होगा। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं बस वो कीजिए, और अपॉइंटेड टाइम 10 घंटों में 10 काम कर सकते हैं। और अगर आप बैठे काम बड़े हाय बड़े काम है हाय बड़ी मसरूफ हूँ, और आधा घंटा फोन पे सुनाते हैं दोस्त को, उस आधे घंटे में अपने आधे कपड़े इसरी कर लेने थे। हम दूसरों को दुखड़े सुनाते रहते हैं, इसलिए हमारे काम नहीं होते। तो मैंने आपको जो गोल दिया है ना, कि अपने कामों के करने का वक्त नोट करें। ज़रूरी नहीं कि जो टाइम टेबल आप बनाएं वो पूरा फॉलो, कभी भी कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा पूरा, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि मैंने ये किया है और ये अभी रहता है, इधर उधर कर करा के होगा, और कभी एक काम ना कर सके तो दूसरा काम तैयार रखें उसकी जगह। हमेशा हालात आपके नहीं होंगे, लेकिन गेट मोर फ्रॉम योर लाइफ, जिंदगी में से और लें। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी तो काम करना सीखा है, तो अपने आप के लिए दुआएं मांगा करें कि अल्लाह जैसे तूने नबी के साथियों को हौसले दिए थे, मुझे भी ऐसे हौसले दे। हम तो एक चोट नहीं खा सकते, वल्लाही ये तो जिस्मों पे चोटें खा रहे थे ना, हम अपने माल की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इज्जत की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई एक आपको कह दो ना कि ये क्या लग गई हो तुम दीन के कामों में, बस तुम पे भी जादू चल गया, चलो बस साथ ही मोरल डाउन। और कोई ये कह दे ना आप तो बहुत काम करती हैं, बस फूल के पड़ गए, सारा काम ही तो मैं ही करती हूँ। तो तारीफ और तनकीद से बेनियाज होके काम करने वाले ही काम करते हैं, मशीन की तरह जुते हुए हैं। कुछ लोग एक काम करके फिर देखते हैं दूसरों की तरफ स्ताइशी नज़रों से, वो चाहते हैं रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स, कोई नाम हो, कोई मेंशन करे, क्या माशाल्लाह आप कोई काम करती हैं, सारे काम तो आप ही करती हैं। वो उतनी देर में दूसरा काम कर लेते हैं शुरू, जितनी देर में लोग दूसरों से तारीफें ले रहे हैं, और खुदा न खासा तारीफ की जगह मिल गई तनकीद, डांट मिल गई तारीफ की जगह, वो कहेंगे ये बड़ा काम, हमसे बातें नहीं जी सुनी जाती, काम भी करते हैं डांट भी खाते हैं। खुशकिस्मत है कि आप डांट खाते हैं, क्योंकि आप काम करते हैं, और जो काम करता ही कोई नहीं उसको कौन डांटेगा। तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इन कामों में लगे रहते हैं। फिर आप देखिए कि एक बड़ा खूबसूरत वाक्या हुआ हंजला बिन अबी आमिर का, अबू आमिर फासिक के ये बेटे थे, इनकी अभी नई नई शादी हुई थी, अपनी बीवी के साथ थे, इतने में जिहाद की पुकार लगी, बीवी को छोड़कर सीधे मैदाने जंग में गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब जंग ख़त्म हुई तो इनकी बीवी बड़ी हया के साथ चादर में लिपटी हुई अल्लाह के नबी के पास आई, कहा मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि हंजला जब गए थे तो जुनाबत से थे, यानी इन पे गुसल वाजिब था, इतनी भी देर नहीं की कि गुसल कर लेते, और आप चूंकि वो शहीद हो गए और शहीदों को गुसल आपने नहीं दिया, तो कहीं वो नापाकी की हालत में ना दफनाए जाए। इस पे अल्लाह के नबी ने कहा गम ना करो, मैं देख रहा हूँ कि फरिश्ते हंजला को गुसल दे रहे हैं। और साहबा कहते हैं जब उनकी लाश उठाई तो उसमें से पानी टपक रहा था, हालांकि मैदान जंग में कहाँ पानी, खुश्की का सारा सफर था और पानी तो था ही नहीं। तो इनको गसीलुल मलाइका कहते हैं, यानी फरिश्तों के गुसल दिए हुए। ईमान बढ़ता इनके वाक्यात सुन के। देखिए जो इतने जज्बाती लम्हों में इस्लाम का साथ देने से नहीं चूकते, वो बाकी वक्तों में कहाँ चूकेंगे। और एक बात अगर आपके कानों पे बोझल ना पड़े तो कह दूं कि इनको जिहाद से नहीं रोका इनके इस अमल ने, और आज अगर हमारे भाई बहनों की नमाजें छूट जाती हैं इस वजह से, तो कितने ही लोग हैं जो नापाक रहते हैं और नमाजें उनकी ज़ाया हो जाती हैं। जो नमाज के लिए उठ के गुसल कर लेगा ना, वो इंशाल्लाह कल जंग का मौका पड़ा तो जंग के लिए भी गुसल कर लेगा। आज हमारा हाल हर तरफ ही उल्टा है। हज़रत हमज़ा इतना प्यारा चचा और कफनाया गया इतनी छोटी चादर में कि सर ढांका जाता तो पाँव खुल जाते, पाँव ढांके जाते तो सर खुलता। कहा कि इस पे सर छुपा दो और पाँव पे सर खार्स डाल दो। मुसअब बिन उमैर के साथ भी यही हुआ, जो अमीर शहजादे थे अपने वक्त के। इस्लाम ने क्या क्या लोगों से कुर्बानियाँ ली। हम सब भी तो सोचें हमारा दिल कैसा है, हम किस तरह के लोग हैं। कोई है तकाबुल, कोई मवासना, कोई कंपैरिजन। अल्लाह के नबी और मुसलमान शहदा के दफन से फारिग हुए, दुआ की तो मदीना का रुख किया। रास्ते में कुछ औरतें मिली जिनके रिश्तेदार शहीद हो गए थे, अल्लाह के नबी ने इनको तसल्ली दी, दुआ दी, कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म था। बनू दीनार की एक औरत आई, अब आप इनकी बात सुनते हो फिर आप इस औरत की जगह खुद को ले आए। इनके शौहर, भाई और बाप, तीन ही करीबी रिश्ते होते हैं ना औरत के लिए। सबसे ज़्यादा हकीकत है कि शौहर प्यारा होता है, हम माने के ना माने। शादीशुदा औरत को शौहर ही से जो नस्बत है वो बेटे से भी नहीं है, अल्लाह ताला की ये शान है। भाई सहारे होते हैं, मोहब्बत होती है, माँ जाए एक घर में पले बढ़े, और बाप, तीनों शहीद हो गए। लोगों ने आके उनको खबर दी, बेटा भी गया, बाप भी गया, भाई भी गया। कहने लगी ये बताओ कि अल्लाह के नबी का क्या हुआ। लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं, यानी जैसा आप चाहती हैं आप वैसे ही हैं। कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मुझे दिखा दो। लोगों ने दूर से इशारे से अल्लाह के नबी को दिखा दिया। जब आप पर नज़र पड़ी उस औरत की तो उसने बेसाख्ता पुकारा, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, और आपके बाद हर मुसीबत हेच है। यानी आप जिंदा है ना तो फिर बाप भाई शौहर चले गए तो कोई गम नहीं। ये कौन कहेगा जिसके दिल में वाकई अल्लाह के नबी की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। मदीना पहुंचे, मुसलमानों ने हंगामी हालत में रात डाली। किस बात की हंगामी हालत थी? जख्म, थकन, गम, अलम, और सबसे ज्यादा गम क्या था कि दुश्मन वापस ना आ जाए। खुश तो आ ही सकते हैं ना जाके, फिर भी मदीना का पहरा देते रहे और अल्लाह के नबी की हिफाजत करते रहे। अल्लाह के नबी को फिक्र लगी कि कहीं दुश्मन वापस ना आ जाए, वापस आया कि तो मुश्किल होगी। ख्याल आ गया कि कहीं दुश्मन वापस ना आए, चुनाचे अगले ही दिन सुबह सुबह आपने ऐलान कर दिया दुश्मन से मुकाबले के लिए चलना है, और सिर्फ वही आदमी जा सकता है जो मारका ओहद में शामिल था। सोचिए जरा, आप वल्ला ही अपने ऊपर लेके सोचें और मैं भी अपने ऊपर लूं। अगर इस वक्त कहा जाए कि अच्छा ऐसा है कि एक अनाउंसमेंट है कि आज की क्लास 2 बजे नहीं 6 बजे ख़त्म होगी, अंदर क्या चोट पड़ेगी? साहबा ने कहा समम व तातन, हमने आपकी बात सुन भी ली और मान भी ली, अभी मानेंगे। ये नहीं कहा सुना है आप मानेंगे, सुन के मान ली, यानी सोचिए हो गया डन। ये एक खूबसूरत नुक्ता है अरबी का कि मुस्तकबिल की बात को माजी के सीगों में कहें तो मतलब है कि डेफिनेटली वी विल डू इट। अल्लाह के नबी आप समझे कि हमने मान लिया। कौन कहेगा जिसके दिल में ज़ौक़े खुदाई होगा। अगले ही दिन मदीना से निकले, 8 मील दूर हमरउल असद नाम की एक जगह, वहाँ पड़ाव डाला। मुशरिकीन मदीना से 36 मील दूर रोहा के मुकाम पर पड़ाव डाल चुके थे, और वहाँ मदीना पलटने के लिए राय मशवरे करने लगे, क्योंकि इनको अफसोस था कि एक बड़ा बेहतरीन मौका हमने ज़ाया कर दिया। अब आप देखिए कि ये बात मुसलमानों के दिल में भी अल्लाह के नबी ने डाल दी कि हो सकता है वो वापस आ जाए, वो भी आ गए। माबित भी नबी, माबित खुजाई, कबीला खुजाया से थे, अल्लाह के नबी के बहुत खैर ख्वाह थे, हमरउल असद में आपके पास आए और ओहद के वाक़े पर आपसे ताज़ियत की कि बहुत तकलीफ़ हुई, आपके साथ ही चले गए, ये हुआ वो हुआ। آپ نے اسے فرمایا کہ وہ ابو سفیان سے ملے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے کہ اس کو کہے کہ خام خواہ لڑائی اچھی چیز نہیں ہوتی، روکو. خیر، معبد روحہ پہنچے. اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے. معبد نے ان کو ڈرایا کہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی جماعت لے کر آئے ہیں کہ آپ نے کبھی ایسی جمعیت دیکھی نہیں ہے. اب تو سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. میرا خیال ہے تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے. یعنی ایکسپلائٹ کیا کہ وہ تو بہت غصے میں بھرے ہوئے آ رہے ہیں اور میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی دیکھنا اس قافلے کو تم دیکھ لو گے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو بھی جوش آتا کہ لو ہم کم ہیں. نہیں، ذوق خدائی نہیں ہوتا نا تو پھر بندہ ایک دم ٹھوس ہو جاتا ہے. اچھا، سب ٹھنڈے ہو گئے، حوصلے ٹوٹ گئے. ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفا کیا. ایک قافلہ جا رہا تھا مکہ سے مدینہ تجارت کے لیے. اس میں ایک شخص تھے، ان کا نام کیا تھا؟ نعیم نام تھا، نعیم. ان کو اس نے بلایا، کہنے لگا دیکھو یہ تھوڑے پیسے لے لو. کوئی لالچ دیا، بس مدینہ میں جا کر ایک خبر پھیلا دو. اور وہ کیا؟ کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. یعنی ان کو نئی مدد مل گئی ہے اور وہ آ رہے ہیں. خیال کیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، کہ لشکر کے آنے کا سن کے ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی. لیکن ہوا کیا؟ سورۃ آل عمران 173. یقین کرے آپ کو جن دنوں میں اپنا ایمان گرتا ہوا دکھے نا، گرتا ہے، ہم سب کا گرتا ہے، فکر نہیں کریں، آپ ان دنوں میں اس آیت کو کھولے کیا کریں، وظیفہ شروع کر دیں ہزار دانوں کی تسبیح پہ. نہیں، آپ اس کی تفسیر سن لیں. ابھی بھی کہوں گی جا کے آپ سبیل الجنہ کے لنک سے صرف اس ایک 173 آیت کی تفسیر سنیں. آپ کو اپنے اندر گرمی محسوس ہوگی اور شرم بھی محسوس ہوتی ہے ہمیں. ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، لوگوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو لوگ آئے ہیں تمہارے خلاف جمع ہوئے، ان سے ڈرو. مراد یہ کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر، اور مسلمان اس کا پیچھا نہ کریں. اور خود جلدی سے مکہ کوچ کر گیا. تو مسلمانوں نے اس پہ کیا کہا؟ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ذوق خدائی ہو. ملا کیا؟ ابو سفیان لشکر کو لے کے چلے گئے اور وہاں سے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا. بن قلبو بنعمت من اللہ وفضل، چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی. اور اللہ بڑے فضل والا ہے.